आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
कविता सत्र के अंतिम कवि के रूप में हमारे सम्मानीय और वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी हैं। पहले सत्र में हम उनका वक्तव्य सुन चुके हैं श्रीकांत जी के बारे में। नरेश जी का जन्म 16 जनवरी 1949 को ग्वालियर में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजन पीठ पर 2 वर्ष और IIT कानपुर में एक महाआवास हेतु आमंत्रित हो चुके हैं। समुद्र पर हो रही है बारिश और सुनो चारुशीला उनके कविता संग्रह हैं। प्रेत हर क्षण विदा है और दौड़ उनके नाटक हैं। एक हती मनु उनका बुंदेली नाटक है और आदमी का आ उनका नुक्कड़ नाटक। नरेश जी की कविताओं में जैसा कि हमने देखा कि लय और संगीत का विचार वो प्रमुख जगह घेरता ही है, लेकिन इंजीनियरिंग और साइंस का जो उनका जो बैकग्राउंड है वो तर्कबुद्धिवाद से भी उनकी कविता को विमुख नहीं होने देता। ये बहुत दुर्लभ चीज है। हम लोग कविता में ये सोचते हैं कि जो उसकी इंटरनल रैशनैलिटी है उसको पार करके कुछ भी कहा जा सकता है, ये एक आम मान्यता है। लेकिन जब नरेश जी की कविता को हम देखेंगे तो लगता है कि उन्होंने ईंट दर ईंट कोई संरचना बनाई। तो मैं नरेश जी की कविता का एक हिस्सा पढ़कर उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। पूरी रात के लिए मचलता है आधा समुद्र, आधे चांद को मिलती है पूरी रात, आधी पृथ्वी की पूरी रात, आधी पृथ्वी के हिस्से में आता है पूरा सूर्य। आधे से अधिक, बहुत अधिक मेरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग आधे वस्त्रों से ढांकते हुए पूरा तन, आधी चादर में फैलाते हुए पूरे पांव, आधे भोजन से खींचते पूरी ताकत, आधी इच्छा से जीते पूरा जीवन, आधे इलाज की देते पूरी फीस, पूरी मृत्यु पाते आधी उम्र में। आदरणीय नरेश जी, सादर आदरणीय। मंच पर अपने सभी साथी कवियों को और आप सब श्रोताओं को इतनी गर्मी में, मैं कहूँगा इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि लखनऊ में 40-50 लोग आ जाएं तो बहुत, और यहाँ तो 70 से ऊपर मैंने गिनती की बैठे बैठे, तो 70 से ऊपर हैं। ये बता रहे हैं कि मेरी गिनती गलत है, 86 लोग हैं। तो हम लोगों को जोड़ लें 4-5-6 को तो 90 के ऊपर, 90 पार है, लगभग 100 कहे जा सकते हैं। तो आप सबका बहुत अभिवादन। ये पहली कविता है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले, तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है कुछ आशा। शिशु जोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। ये दूसरी कविता है इस बारिश में। इस बारिश में जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई।
जिसके पास चली गई मेरी जमीन उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं उसी के लिए घिरती हैं, कूदती हैं कोयलें उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सोंधी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं बैल नहीं खेतों की गैल नहीं एक हरी बूंद नहीं तोते नहीं ताल नहीं नदी नहीं आटा नक्षत्र नहीं कजरी मनहार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन उसका नहीं कोई आसमान। अगली फसल होते ही सब चुपता कर दूंगा। अब तो मेरी झूठी ये गुजारिश भी चली गई उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई जिसके पास चली गई मेरी जमीन। टेलीविजन खोलते ही काला लबादा ओढ़े एक नकाब पोश छुरा चमकाता और काफिरों की गर्दन हवा में उड़ने लगती तो मैं चैनल बदल देता हूं। चैनल बदलता हूं तो गेरुआ लबादा ओढ़े एक घुटमुंडा छुरे चमकाता है। ये तो और खतरनाक है क्योंकि ये छुरे उसके हाथों में नहीं उसके शब्दों में है जो एक साथ लाखों दिमागों में प्रवेश कर सकते हैं। मैं फिर चैनल बदलता हूं तो किसानों सिपाहियों औरतों बच्चों की लाशों पर अच्छे दिन आ गए हैं कि घोषणाएं होने लगती हैं। मैं टीवी बंद कर देता जानता हूं कि टेलीविजन बंद कर देने से छुरों का चमकना बंद नहीं हो जाता बल्कि वे मेरी गर्दन के और नजदीक आ जाते हैं। अब इस उम्र में ये निर्णय मेरे लिए निश्चय ही सख्त है लेकिन दोस्तों अब ये मेरे लिए तो कट्टा से बाहर आ जाने का वक्त है। चले गए जो लोग कहां जाकर अब उन्हें तलाशें नहीं मछलियां गंगा तट पर तैर रही हैं लाशें। शांति लिखी ओठों पर लेकिन सीने में कोहराम लिखा है। शांति लिखी ओठों पर लेकिन सीने में कोहराम लिखा हम सबका काम तमाम लिखा। श्याम घटा पर हिंद महासागर का जैसे नाम लिखा है भक्तों के सीने पर जय श्री राम लिखा है। श्याम घटा पर हिंद महासागर का जैसे नाम लिखा है भक्तों के सीने पर जय श्री राम लिखा है और सभी जानते इन लाशों पर किस कातिल का नाम लिखा है। ये कविता है कॉन्क्रीट। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं। आपस में सटकर फूटी कलियां एक दूसरे के खिलने के लिए जगह छोड़ देती हैं और जगह छोड़ देती हैं गिट्टियां। आपस में चाहे जितना सटें अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देती हैं। उसी में तो भरी जाती है रेत और रेत के कण भी एक दूसरे को चाहे जितना भींचें अपने बीच अपने बराबर जगह खाली छोड़ देते हैं। उसी में तो भरी जाती है सीमेंट। सीमेंट कितनी महीन और आपस में कितनी सटी हुई लेकिन उसमें भी होती है खाली जगह। अरे उसी में तो समाता है पानी और पानी में भी खाली जगह। खैर इसे छोड़िए। इस तरह कथा कॉन्क्रीट की बताती है रिश्तों की ताकत में अपने बीच खाली जगह छोड़ने की अहमियत के बारे में। कविता है मछलियां। एक दिन हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था। उस दिन घर में साफ पानी नहीं था। और सुबह तक सारी मछलियां मर गई थी। एक बार हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था, घर में साफ पानी नहीं था और सुबह तक सारी मछलियां मर गई थी। हम ये बात भूल चुके थे, लेकिन एक दिन राखी ने अपनी कॉपी और पेंसिल देकर मुझसे कहा, पापा इस पर मछली बना दो। मैंने उसे छेड़ने के लिए लिख दिया मछली। वो गौर से देखती रही, फिर बोली, पापा ये कैसी मछली, इसका सिर कहाँ और पूंछ कहाँ? मैंने कहा, बेटा ये मछली का माँ, ये छा और ये ली, ऐसे लिखा जाता है मछली। उसने कहा, अच्छा तो जहां मछली लिखा है ना वहां पानी भी लिख दो। तभी उसकी माँ ने पुकारा और वो दौड़ कर जाने लगी, लेकिन अचानक ही दूर से पलटी और चिल्ला कर बोली, साफ पानी लिखना पापा, साफ पानी लिखना पापा। मछलियों को लेकर ये दूसरी कविता है। मछलियों को लगता था जैसे वे पानी के लिए तड़पती हैं, वैसे ही पानी भी उनके लिए तड़पता होगा। मछलियों को लगता था कि जैसे वे बिना पानी के तड़पती हैं, तो पानी भी उनके लिए तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल, तो पानी उन्हें छोड़कर ये जाल के छेदों से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। क्या सुनना चाहते हैं बताइए। जिंदा लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते, इंतजार तो लाशें भी नहीं करती। एक दिन हद से हद दो बस, इसके बाद तो वे हवा में उड़ने लगती हैं, उनकी गंध हमारे सीने में नथनों में प्रवेश करके हमें तड़पने के लिए मजबूर कर देती, पीछा करती, घेरती, सीने पर हो जाती है सवार। लाशों को हमसे ज्यादा हवा चाहिए, लाशों को हमसे ज्यादा पानी चाहिए, उन्हें हमसे ज्यादा बर्फ चाहिए, उन्हें हमसे ज्यादा आग चाहिए। लाशों को सब कुछ हमसे ज्यादा चाहिए, उन्हें चाहिए इतिहास में हमसे ज्यादा जगह। इंतजार करती होंगी नदियां बारिश का वर्ष भर, वसंत का इंतजार करते होंगे वृक्ष, लेकिन लोग, जिंदा लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। मुश्किलें, मुसीबतें और मौत तो आती ही है, लेकिन इससे पहले कि कोई संकट उन्हें चुने, वे खुद ही चुन लेते हैं अपना मन चाहा संकट। अब चुन लेते हैं अपने मरने की सही जगह और वक्त। बार बार नहीं मरते जिंदा लोग, जिंदा लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते। गिरना सुना दूं क्या? ये कविता है गिरना। आप कहें तो सुनाओ, नहीं तो कुछ और। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। चीजों के गिरने के नियम होते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में इंजीनियरिंग में चैप्टर था लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडीज। तो चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिली और मिलती रही कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो तो लिफाफे में बचे रहो, यानी आंखों में गिरो तो चश्मे में बचे रहो, यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में भले ही गिर जाओ। तो यही सोच कर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी उस कद में कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। चीजों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 17वीं शताब्दी के मध्य, जहां पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ा था गैलीलियो और चिल्ला कर बोला था कि इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे। लेकिन आज तो आप अरस्तु के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे और गिरते हुए देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों, कागजों की पतरणों को एक साथ एक गति से गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया। आज 400 बरस बाद मुझे कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप। कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं और हरकत, हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग, एक साथ एक गति से एक ही चीज के लिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना और गिरो, गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर जहां से टूटती हैं मीठे पानी की नदियां। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए गिरो, आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच, गिरो पतझर की पहली पत्ती की तरह किसी कोमल के लिए जगह खाली करते हुए और गाते हुए ऋतुओं का गीत कि जहां पत्तियां नहीं झड़ती वहां वसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए, गिरो जल प्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो, गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। मगर रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए, अरे उनका कोई तीर तो रचा ही नहीं गया। तो गिरो अपने इंद्रधनुष से छूटे हुए तीर की तरह बंजर जमीनों को वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए, बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर, पके हुए फल की तरह धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। दांत गिर गए, गिर गई नजर, और अब स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें, शहर और चेहरे, और रक्तचाप देखा गिर रहा, तापमान वो भी गिर रहा, और गिर रही है खून में मिकदार होमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए तुम्हारा समूचा वजूद एक बार की, तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो, और गिरो किसी दुश्मन पर गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूं गिर कर दिखाओ तो सही। हो गया पूरा।
लाख और आशीष का नया ताल वाली सवित्री एक कोई संगीत
पर
एक संगीत पर
तो आपको पता है पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। एक हिस्सा एक छोटी गड्ढा रंग है, सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल पीले सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। पड़ोसी ने चिल्ला कर कहा, अरे मजा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है। मैंने कहा, अभी तो और मजा आएगा, बारिश तो आए दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी। ये छोटा सा, बहुत छोटा हिस्सा चंबल एक नदी का नाम कविता से है। एक शाम जब गायें खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हांकी जा रही थी, तो तीन बहनें निकली तालाब में डूबने। सूर्य डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है। जैसे जैसे छायाएं गायब होती हैं, उनकी जगह भी गायब होना शुरू हो जाती है। अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही दाखिल हो जाना चाहिए उन्हें अपने घरों के प्राचीन और पवित्र अंधकार में। तो एक शाम जब बकरियां बाड़ों की तरफ, गायें खूंटों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ फांकी जा रही थी, तो तीन बहनें निकली तालाब में डूबने। तो बड़की बोली कि पहले मैं डूबूंगी, क्योंकि छुटकी को डूबता हुआ देख नहीं पाऊंगी। तो छुटकी बोली कि जिजी तुम नहीं रहोगी तो मुझे अकेले डूबते हुए कितना डर लगेगा। तो मछली बोली कि तीनों बहनें एक साथ डूबेंगी। तो छुटकी बोली, मछली तेरे जब कमर तक पानी आएगा तो मेरे तो सिर तक आ जाएगा, साथ कैसे डूबेंगी। मछली ने छुटकी को गोद में उठा लिया। तो छुटकी बोली, मछली तुझे तो तैरना आता है, तू कैसे डूबेगी। मैं गले में पत्थर बांध दूंगी, लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं, मैं चुनरी से बांध दूंगी पत्थर, इससे तो चुनरी हट जाएगी तो तुझे शर्म नहीं लगेगी। मछली ने कहा, नहीं, लाशों को कोई शर्म नहीं लगती।
बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।